मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है।
ओम शांति। ये नौवां शाम का समय बहुत सुंदर खुशबू लेकर आया है। एक ऐसी व्यक्तित्व को हम अपने सामने देख रहे हैं जिनके लिए दादी प्रकाशमणि जी कहा करते थे, गीता तुम हो सच्ची गीता। ऐसे गीता जैसी पावन दीदी जिनका नाम ही गीता है, बहुत विशेष हस्ती है बाबा के इस यज्ञ में। आपका हम एक हाथ की ताली से स्वागत करते हैं, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आदरणीय दीदी जी योगी मूरत है, दिव्यता का अवतार है, शांति स्वरूपा है, एकदम विनम्रता से महानता के कर्तव्य करना जानती हैं, सरलता से बड़े गहन से गहन विषय को सामने वाले के अंदर उतार देना जानती है। आप आध्यात्मिकता की प्रतिमूर्ति है और लाखों आत्माओं के हृदय में आपने बाबा के प्यार की ज्योत जगाई है। आपका सबसे रुचिकर विषय है तपस्या करना और कराना। भारत और विदेश अनेक देशों में आप लगातार जाते रहते हैं, सबकी लगन बाबा के साथ लगवाने के लिए, नयों को बाप का परिचय देना और ब्राह्मणों को तपस्वी मूरत बनाना, इसमें आपको सिद्धि हासिल है। आदरणीय गीता दीदी जी को 50 वर्ष हो गया है, गोल्डन जुबली टाइम चल रहा है बाबा का बने हुए। 50 वर्ष का विशेष अभिनंदन है, जरूर ताली बजा के होना चाहिए। और 47 ईयर्स से लॉन्ग पीरियड आप इस यज्ञ के अंदर विशेष पिलर के रूप में अपना कार्य कर रहे हैं। पहले गुजरात सब जोन में आप सब जोन इंचार्ज के रूप में सेवाएं देते रहे, फिर बड़े दादी जी के आह्वान पर आप हेडक्वार्टर में आए, तब ज्ञान सरोवर अभी बना ही था, तो ज्ञान सरोवर एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड में आप इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अकोमोडेशन देखने की विशेष सेवाएं देते रहे। वर्तमान समय शांतिवन में बेहद की सेवाएं होती है और उसमें सबसे विशेष पार्ट है कुमारियों की टीचर ट्रेनिंग, तो उसके भी आप मुख्य संचालिका के रूप में उस ट्रेनिंग के सारे दिशा निर्देश का कार्य आप करते हैं, जिसमें कुमारियां टीचर बन करके फिर देश विदेश में सेवाओं के निमित्त बनती हैं। आप टीचर ऑफ टीचर्स हैं, जितने टीचर्स की भी भट्टी होती है, उनके रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं, आप उसके भी फैकल्टी हैं। बिजनेस सर्विसेज विंग है अपना राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन का, उसके भी आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं और लाखों विशेषताओं के धनी हैं। ऐसे आदरणीय गीता दीदी जी आज बहुत स्पेशल विषय स्वस्थिति से परिस्थिति पर विजय कैसे प्राप्त की जाए, जो सबके बहुत काम का विषय है, और मैं सबको ये राय दूंगी, जरूर पूरा नोट करें। गीता दीदी की शब्दावली, भावनाएं, गुह्यताएं ऐसी होती है जो बहुत स्पष्ट और बहुत काम की होती है। इस विषय पर आदरणीय दीदी जी प्रकाश डालेंगे। ओम शांति। नित्य पुरुषार्थी हम सभी है ही, फिर भी मधुबन में भट्टियों में हम आते हैं, उसके पीछे हमारा लक्ष्य यही होता है कि हम अपनी आत्म स्थिति इतनी शुद्ध, इतनी शक्तिशाली और ऊंची बनाए। क्योंकि हम बाबा के बच्चे, ज्ञानी तू आत्माएं हैं, हम जानते हैं कि संगम युग में ही ये मौका है अपने आप को जितना ऊंचा उठाना चाहे। बाप समान बनाना चाहे, हम अपने आप को बना सकते हैं, क्योंकि खुद बाबा हमें गाइड करते हैं। और युग में तो ये पॉसिबल ही नहीं है, और अभी की जो स्थिति हम बनाते हैं वही पूरा चक्र में खर्च करते हैं। अभी जमा होता है और फिर जैसे ड्रामा में आते हैं, सतयुग के प्रथम क्षण से ही खर्च शुरू हो जाता है। तो अभी अपने आप को जितना भर सकते हैं, बना सकते हैं, दो चीज फेवर में है, बाबा और ड्रामा। भक्ति में भी वही चाहना थी, पर न बाबा थे, न सत्य ज्ञान था और न ही समय चढ़ती कला का था। अभी ड्रामा भी सतयुग की ओर बदल रहा है, अपनी हाईएस्ट स्टेज में पहुंच रहा है और उसके चेंज एजेंट सूत्रधार हम सभी निमित्त बने और बाबा हमें गाइड करते हैं हर कदम। क्योंकि जीवन में जो भी बातें आती है, हम अपनी आत्म स्थिति से ही रेस्पोंड करते हैं। परिस्थिति बाह्य है, शरीर से आती है, संबंधों से आती है, सेवा में आती है, प्रकृति से आती है, समाज सरकार के तरफ से आती है, परिस्थिति आउटसाइड एजेंसी से आती है, दूसरों के तरफ से आती है। पर उसको रेस्पोंड हम अपनी इनर स्टेट, अपनी आंतरिक आत्मस्थिति से करते हैं। हम परिस्थितियों को अंडर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो दूसरों के तरफ से है। पर हम अपनी स्थिति को बना सकते हैं। और बाबा ने हमें पहले से बता दिया है कि ये अंत का समय है, महापरिवर्तन का समय, और ये टोटल हिसाब किताब क्लियर होने का समय, पूरा ड्रामा तो हिसाब किताब बैक फॉरवर्ड होता रहता है, माइनस प्लस करके हिसाब लिंगर ऑन होता रहता है। पर अभी फाइनल क्लियरेंस है, आत्मा को वापस अपनी ओरिजिनल स्टेज में पहुंचना। तो हम समझ सकते हैं, हमें कोई चीज भारी नहीं लग सकती। बाबा कहते ना, तुम्हें कोई आश्चर्य नहीं लगेगा, कोई प्रश्न नहीं होगा कि ऐसा क्यों होता है। लोगों को ज्ञान नहीं है, इसलिए उनको तो भारी शॉक लगता है कि ये क्या हो रहा है, हमारे बच्चे ऐसे क्यों है, ये संसार में क्या हो रहा है, उनको तो आघात लगता है। पर बाबा ने हम बच्चों को ज्ञानी तो आत्मा बनाया है, हम सत्य ज्ञानी आत्मा है। इसलिए जो भी बातें आती हैं व्यक्तिगत जीवन में, परिवार में, कार्यक्षेत्र में, सेवा में, अलौकिक परिवार में, पर हम समझ सकते हैं। और इसलिए हरेक का अनुभव भी होगा कि बात आई नहीं और ज्ञान जवाब देता है, है ना, तुरंत बुद्धि में ज्ञान आ जाता है, कोई बात नहीं, ड्रामा है, हर आत्मा का पार्ट है, हर कोई पुरुषार्थी है ना, तुरंत ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी हम बच्चों को उपलब्धि है, प्राप्ति है। नित्य जो ज्ञान योग का हम अध्ययन करते हैं, अभ्यास करते हैं, उसी का ये रिजल्ट है कि तुरंत बुद्धि में जवाब आता है, ज्ञान आ जाता है, प्रश्न नहीं होता है, कंफ्यूजन नहीं है। कोई आश्चर्य की बात नहीं लगती, पर तुरंत ज्ञान बुद्धि में आता है। होता है ऐसे? हाँ, होता है ना ऐसे? ये भी अनुभव होगा कि कोई बात पर माना हम दुखी होना चाहे तो भी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ज्ञान ही बुद्धि में आ जाता है, बाबा बुद्धि में आ जाता है, मुरली से जवाब मिल जाता है। और हम महसूस करते हैं कि वास्तव में ड्रामा में दुख जैसी कोई चीज नहीं है, है ना? अज्ञानता के कारण दुख महसूस होता है। जब ज्ञान से समझ लेते हैं तो दुख की फीलिंग नहीं आती। तो बाबा ने ये सही कहा है कि राज ना जानने वाला नाराज होता है। जिसकी बुद्धि में ज्ञान का राज है, बाबा आकर के सारे ज्ञान के राज स्पष्ट करते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है जिसके बारे में बाबा ने ना बताया है। ऐसी कोई बात? मनुष्य से देवता बनने के लिए जो जरूरी है वो सारे राज बाबा ने समझाए हैं। क्योंकि लक्ष्य क्या है? लक्ष्य तो देवता बनना है, सतयुग स्थापन करना है, पावन बनना है, लक्ष्य तो ये है ना। बाबा भी कहते हैं ना कि मैं किस लिए आया हूं, मेरा मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य कौन सा है? पतितों को पावन बनाना है। और बातें मुझसे नहीं पूछो, मेरा काम, बाबा ने तो स्पष्ट बता दिया है। उस लक्ष्य के हिसाब से जो जरूरी है वो सारी बातें बाबा ने बताई है, जो जरूरी नहीं है वो बाबा नहीं बताते हैं। कई ऐसी बातें पूछते हैं ना बाबा से, या कई सोचते रहते हैं। विनाश की बात कोई पूछना चाहते बाबा से, पशुओं की आत्मा कहाँ जाएगी? बाबा कहता मनुष्य से देवता बनने के लिए जो जरूरी है वो मैं बताता हूँ, बाकी के राज तुम देवता बन जाएंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगी। बाबा कहते ना तुम सतयुग में जाएंगे, अपने आप आपको पता चलेगा वहां कैसे सिस्टम चलेगा। इसलिए जब ज्ञान स्वरूप है तो मन में कोई बात हलचल आती ही नहीं। वो ज्ञान होते हुए है ना, अगर बात फील होती है, जैसे भाई कोई बात नहीं, ड्रामा कहते हुए भी दुखी होते रहते हैं, माना ज्ञान भी याद है पर स्थिति नहीं बनी है। बात यह है, स्मृति है पर स्थिति नहीं, तो अंतर महसूस होता है ना कि स्मृति है, ज्ञान है, समझ है पर स्थिति नहीं बनी है, क्योंकि हम ज्ञान को अपने आप में फिक्स करना चाहते हैं, धारण करना चाहते, स्थायी रूप से धारण करना चाहते। और यही कारण है कि हम रोज पुरुषार्थ करते, रोज अभ्यास क्यों जरूरी है, क्योंकि शक्तिशाली रूप से, नेचुरल रूप से और स्थायी मजबूत रूप से धारणा नहीं हुई है, स्थिति नहीं बनी है। कर्म में मजबूत है ना, देखो कर्म कितना भी ऊपर नीचाई होगी, मन में हलचल होंगी पर कर्म की डिसिप्लिन हम नहीं तोड़ते हैं। इतनी दृढ़ता तो बाबा के बच्चों में है कि हम कर्म में चलित नहीं होते हैं, और ये बाबा के ज्ञान की शक्ति है, सत्य की शक्ति है, जो ज्ञान में आते ही हमें प्राप्त हो जाते। इसलिए जो हमारे ईश्वरीय जीवन के मूलभूत धारणाएं हैं उसको हम नहीं तोड़ने देते। दुनिया वाले तो वो धारणाएं सोच भी नहीं सकते, बाबा के बच्चे ज्ञान में आते ही उन धारणाओं में पक्के हो जाते। फिर वो ब्रह्मचर्य है, एक बाबा में निश्चय है, अन्न शुद्धि है, दिनचर्या है ना, जो भी हमने अडॉप्ट किया है हम उसको कमजोर नहीं होने देते हैं, क्योंकि वो एकदम नेचुरल हमारे लाइफ में बाबा के बनते ही आ गए, मेहनत नहीं लगी। पर उसके बाद भी हम पुरुषार्थी हैं नित्य, और हमारा ये निर्णय है, ये धारणा है, बाबा का भी कहना है और हमने भी स्वीकार किया है कि जहां तक जीना है ज्ञानामृत पीना है, वरना पुरुषार्थ करते रहे, क्योंकि हमें संस्कार बनाने, इसलिए संगम युग के अंत तक जो स्थिति हम बनाएंगे उसी स्थिति से हम सतयुग
शुरू करेंगे। संगम की अंतिम स्टेज हमारी सतयुग की आदि स्टेज होगी। हम उसी से अपना सतयुग शुरू करेंगे। इसलिए अंत तक पुरुषार्थ करते रहे, हम थकते नहीं हैं। शरीर की दिनचर्या कितना नेचुरल रूप से जीवन में स्वीकार की हुई है। कोई कभी सोचता है कि आखिर कब तक सोना है, कब तक नहाना है, कब तक खाना है? कोई प्रश्न होता है किसी? कितना भी व्यस्त हो, मेहमान हो, कितना भी बड़ा प्रसंग हो, आगे पीछे थोड़ा बहुत समय निकाल करके भी सो लेते हैं, खा लेते हैं, करते हैं कि नहीं करते? उसमें कभी प्रश्न होता है कब तक? क्योंकि खुद को शरीर समझते थे तो वो दिनचर्या हमने नेचुरल स्वीकार कर ली थी। पर अब हमें पता बाबा ने दिया है ना, अब सत्य हमें पता है कि हम आत्मा हैं, तो उसकी दिनचर्या भी इतना ही हमारी नेचुरल बननी चाहिए। बाबा कहते ना, आत्मा के लिए योग स्नान है। बाबा की याद से आत्मा शुद्ध होती है, मन बुद्धि सभी प्रभावों से मुक्त होती है। दिन भर जितनी बातें होती हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, थोड़ा जो प्रभाव आता है मनोस्थिति पर, फिर से बाबा की याद में हम बैठ के मूल शक्तियों को रिवाइज करते हैं ना, बाबा के सामने बैठकर। खुद की सत्यता भी रिवाइज करते हैं कि मैं वो ही शुद्ध आत्मा, सत्य आत्मा, शांत आत्मा, प्रथम लेसन है ना। कितनी सिंपल चीज पर रोज हम रिवाइज करते हैं। सुनने में सिंपल पर बाबा ने, दादी कितना अंडरलाइन कराती है, मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। दो चीज बाबा ने बताई, हम कौन हैं और हमारा कौन है। उसी के आधार पर तीसरे का निर्णय आता है कि मुझे क्या करना है। पर ये रियलाइजेशन रोज बार बार करनी, ताकि एक स्थायी अवेयरनेस बनी रहे। कई कहते हैं ना कि वैसे मैं ये मानता हूं, लक्ष्य भी रखता हूं, नॉर्मली मैं शांति से ही व्यवहार करता हूँ, प्यार से ही चलता हूँ, कहते हैं ना। पर बात ऐसी आई ना कि गुस्सा आ गया, अवस्था बिगड़ गई, व्यवहार खराब हो गया, मैंने समय पर क्यों याद नहीं रहा। क्योंकि रोज अभ्यास नहीं, रोज हम अभ्यास करते हैं। आज अभी ही एक किताब दादी सुना रही थी, 2015-16 की मुरलियों का सार, छोटी किताब। उसमें था कि बाबा कभी इम्तहान लेंगे कि बच्चे कितना याद में रहते। तो समय पर याद रहे, स्थिति रहे, उसकी विधि ही ये है कि रोज रिवाइज कर, रोज पाठ पक्का करते हैं तो समय पर याद रहता है कि मुझे किस अवस्था में रहना है। और दूसरा, रोज देहभान से न्यारे रहते हैं, यही अभ्यास रोज बाबा पक्का कराता है ना मुरली में, है ना। हम समझते हैं कि ये कॉमन पॉइंट है, रोज बाबा कहते हैं, पर ये कॉमन पॉइंट नहीं है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसलिए बाबा रोज अनेक बार रिवाइज करता है, क्योंकि जितना हम देह भान से न्यारे रहते हैं, आत्मा को डिटैच रहने की प्रैक्टिस हो जाती है। और देह भान से न्यारा रहने का अभ्यास हमें सभी बातों से साक्षी रहने की शक्ति देता है। फिर कोई भी प्रभाव आप ज्यादा नहीं लेंगे अपने आप पर, क्योंकि आपको डिटैच रहने की प्रैक्टिस। आज जो भी बात घटती है, इंसिडेंट होते हैं, परिस्थिति आती है, क्योंकि हम इन्वॉल्व उन्हीं बातों में हैं तो ज्यादा असर आता है। पर अगर आपको ये अभ्यास है न्यारा रहने का, और आत्मा है ही न्यारी ना, तो जितना वो स्मृति रहती है, अटेंशन रहता है, तो हम साक्षी होके देख सकेंगे बात। मुख्य चीज वही है ना कि प्रभाव हमारे पर ज्यादा ना आवे, और वो भी नेगेटिव रिएक्टिव बातों का प्रभाव न आए। तो अगर आप देह भान से न्यारे आत्मा भान की स्थिति में हैं, तो ड्रामा के हर सीन में साक्षी बन सकेंगे। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा योग तो प्रवृत्ति मार्ग का योग है ना। हमें प्रैक्टिकल सबके साथ रहते करते ये स्टेज बना ली है योग की। वो लोग सारा दिन इन्हीं बातों में इन्वॉल्व रहते हैं, वही बातें सोचते रहते हैं, तो वो जुड़े हुए ही हैं तो ज्यादा प्रभाव आता है, क्योंकि वो है ही अटैच उन बातों से, इसलिए उसमें कुछ भी हलचल ऊपर नीचे आती है तो असर आता है। पर हम सब कुछ करेंगे, सबके साथ पार्ट प्ले करते हैं, पर अंदर से डिटैचमेंट है कि मैं देह भान से न्यारी। दूसरा डिटैचमेंट का अभ्यास क्या है? हम कमल फूल हैं, हम कमल हैं। बाबा कहते हैं ब्राह्मण बच्चे क्या है, कलयुग के कीचड़ में कमल है। तीसरा, हम ट्रस्टी हैं, ग्रस्ती नहीं है। चाहे हम सेंटर में रहते हैं या आप घर में रहते हैं, सेवा करते हैं या जिम्मेवारियां संभालते, पर अब हम सबको ये पाठ पक्का है कि मालिक बाबा है, हम निमित्त है, ट्रस्टी है, हम ट्रस्टी हैं। ये भी डिटैच रहने के लिए ही बाबा कहते हैं। ब्राह्मण जीवन में भी डिटैच रहने के लिए बाबा ने और आगे का स्टेप दिया, तुम फरिश्ते। ब्राह्मण जीवन में भी न्यारा, क्योंकि ब्राह्मण परिवार भी बहुत विस्तार का है, वैरायटी का है। सेवा, साधन, स्थान, परिवार बहुत विस्तार है, इसलिए उसमें भी हम फरिश्ते हैं। और टोटल डिटैचमेंट की लास्ट पॉइंट बाबा ने हमें बता दी, वापस घर जाना है। ये सत्य है, बात नहीं है, ये ड्रामा का भावी निश्चित है कि हमें वापस घर जाना है। ये ऐसी बात नहीं है, ये रियलिटी है। ड्रामा में न्यारा बनने की व्यवस्था बनी हुई है, शरीर छोड़ना बाबा जीते जी पहले तैयार कर देते। तो अगर ये अभ्यास है तो बातों का प्रभाव कम पड़ेगा। क्योंकि हम एक रस बनना चाहते हैं, अच्छा लड़ोल बनना चाहते, शक्ति तो उससे ही कहा जाएगा ना। और शुरू से बाबा हमें ये कहते हैं ना कि सदा, कभी कभी तो हर कोई बहुत अच्छा अनुभव करते, तभी तो हम लगे रहे हैं ना, है ना। हर एक को बहुत सुंदर अनुभव बाबा की याद के, मदद के हुए हैं, तभी तो हम पुरुषार्थी हैं। पर सदा निरंतर हम इसी चीज के पुरुषार्थी है ना कि सदा वो स्टेज है, एक रस। वैल्यू तो इसी चीज की है ना। बाबा कहते हैं ना, मुरली में कई बार आता है ना कि वे लाइट घड़ी घड़ी आती है, जाती आती जाती आती जाती, तो वो फ्लक्चुएशन अच्छा नहीं लगता है ना। और ये लोग कहेंगे बंद कर दो स्विच, आंख खराब हो जाएगी, है ना। फ्लक्चुएशन अच्छा नहीं लगता। स्थिरता, एक रसता, निरंतरता, बने बिगड़े बने बिगड़े, तो पावर नहीं रहता है ना। बाबा कहते इसमें पावर नहीं रहता। तो बनने का आधार, लक्ष्य, हम क्या बनना चाहते, एक रस, सदा निरंतर, अटल अचल, लक्ष्य क्या है। बनते भी रहे, बिगड़ते भी रहे, लड़ते भी रहे, मिलते भी रहे, वो है या एक रस। आज वरदान में या उसमें भी बाबा ने कहा ना कि आपकी यादगार मूर्ति में क्या विशेषता है, एक रस स्वरूप है ना उसका। सामने वाला भगत किसी भी रीति का आया है, सच्चा है, बनावटी है, स्वार्थी है, मतलब ये है, पर देवता एक रस है, तो वो हमारा गायन है ना। क्योंकि देवताई स्टेज ऐसी ही होगी, इसलिए यादगार प्रतिमाएं ऐसी। सतयुगी स्थिति हमारी कैसी होगी, नेचुरल आत्माभिमानी, नेचुरल आत्माभिमानी, इच्छा मात्रम अविद्या। माया जीत, प्रकृति जीत, काल जीत, जगत जीत, युद्ध की स्थिति नहीं, विजय की स्थिति। कहते हैं हनुमान जी की गदा ऊपर है, मीन्स युद्ध जारी है अभी भी। विष्णु की गदा नीचे है, मीन्स युद्ध विराम है, विजय, नेचुरल विजय। तो वो लक्ष्य हमें रोज पक्का करना होता है। चलते चलते कई बार हमारा लक्ष्य ही डाइल्यूट हो जाता है, इतना बहुत हो गया है ना, इतना बन गए वो बहुत अच्छा है बस। कई बार हम सेटिस्फाई हो जाते हैं कि ठीक है ना, पवित्र हैं, योगी हैं, सेवा कर रहे हैं, सहयोगी हैं, अब ज्यादा क्या पुरुषार्थ करना। और बाबा बाबा की मुरली में सदा ब्रह्मा बाबा का क्या दिखाई देता है? बच्चे पूरा पुरुष वर्षा लो, संपूर्ण प्राप्ति कर रहे हैं। तो ये अभ्यास हमें बातों के प्रभाव से न्यारा रखता है, हम परिस्थिति के प्रभाव में नहीं आए। शिकार होने की तो बात ही नहीं है, अवस्था बिगाड़े और फिर बनाए। बाबा कहते हैं दीवा बुझ जाए फिर जलाएं, फिर बुझ जाए फिर जलाएं। पहले से अटेंशन रहे कि घी डाल दे, बुझने न दे जगी हुई ज्योति। तो वही चीज स्थिति बनाने में भी हमें ध्यान में रखनी। ऐसे नहीं मैं देख तो रहा था, मुझे लग तो रहा था कि माया आ रही है, मूड कम हो रहा है, पर देख क्या रहे थे। बाबा कहते हैं ना परखना मीन्स खत्म कर देना वहां ही माया को। परखने का मतलब ही है कि माया को वहां समाप्त कर देना, न कि देखते रहना और शिकार हो जाना। दूसरी बात, बाबा ने हमें शुरू से बताया है, कई सोचते हैं ना कि पता नहीं बाबा के बनने के बाद बहुत मुसीबतें आती है। हर किसी को आती है। आत्मा ने हमने लंबा पार्ट बजाया है तो नेचुरली उस हिसाब से है। छोटा सा पार्ट बजाएं, छोटे से एक्टर बने तो बात नहीं आएंगी इतनी, पर हम तो कौन है, हीरो एक्टर है। हमने तो आदि से अंत तक रोल प्ले किया है तो नेचुरली हमारे सामने बातें ज्यादा आएगी ना, क्योंकि हमने बहुत पार्ट प्ले किया है तो कहीं ना कहीं कोई हिसाब बना हुआ है। हीरो एक्टर है पर बाबा ने तो हम बच्चों को पहले से ही बताया है कि तुम बच्चे मेरे बनेंगे तो दुनिया तुम्हारी दुश्मन बनेगी। जब बाबा को अपना बनाते हैं तो दुनिया विरोध करती है ना। माया तुम्हारी दुश्मन बनेगी। हरेक को माया आएगी, आगे पीछे, आज नहीं तो कल, अभी नहीं तो अंत में, बाद में। बताते हैं ना कि एक बार बाबा से पूछा, साकार में बाबा थे तो पूछा कि बाबा आप रोज उठ के मुरली में माया माया की बातें करते हैं पर मुझे तो माया कभी आती ही नहीं है। उस बच्चे ने बाबा से पूछा तो बाबा ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि बच्ची या तो तुम माया की मुरीद होंगी जो तुमको पता ही नहीं चलता है कि माया आती है। जब माया के वश होते हैं तो अज्ञान काल में कहां कोई सोचता है कि माया आती। तो बाबा ने कहा या तो तुम माया की मुरीद हैं जो तुमको मालूम ही नहीं पड़ता है कि माया आती, या तो तुम बहुत महारथी हो जो तुमको माया नहीं आती। तो हर कोई माया की बातों से, परिस्थितियों से गुजरता है। ऐसे ही विजयी नहीं बने हैं, इनमें पास हुए हैं। बाबा के दिन जब कोई नौ कला हो जाती है, तब मैं आके तुमको 16 कला संपूर्ण बनने का लक्ष्य देता। माना कहां जीरो, पट खाते में आ गए और ऊपर चढ़ना है। तो हर कोई पुरुषार्थ से ही आगे बढ़ता है। इसलिए मुझे माया आती है ऐसे नहीं सोचना है, हर किसी के सामने बातें आती है। क्योंकि सबसे बड़ी परिस्थिति आप किसको समझेंगे, सबसे बड़ी मुसीबत, विघ्न, समस्या किसको कहेंगे? माया को कहेंगे ना। सूक्ष्म विकारों के तूफान है ना, उसकी तुलना में फिर शारीरिक, आर्थिक, पारिवारिक, ये बातें कोई ज्यादा महत्व नहीं रखती है। क्योंकि अब हम कौन सा लक्ष्य लेके चल रहे हैं, इसलिए अब तो हम सब ये चाहते हैं ना कि मनसा में भी तूफान ना। क्योंकि जितना आत्मा हम शुद्ध बनेंगे और कर्म श्रेष्ठ बनेंगे, तो भाग्य तो हमारा श्रेष्ठ बनना ही है और माइनस का खाता भी खत्म होते जाना है, वो तो ऑटोमेटिक होना है। जिसके कारण परिस्थिति क्यों आती है, माइनस का हिसाब है ना, उधार खाता है। बाबा कहते हैं ना 63 जन्मों का उधार सिर पर है, वो परिस्थिति के रूप में आता रहता है। तो वो ऑटोमेटिक सेटल होगा जब हम स्थिति और सत्कर्म बनाने पर ध्यान देते। और माया आने के ये कारण है ना। समझो कोई भी परिस्थिति आती है शरीर की, आर्थिक या पारिवारिक या स्वभाव संस्कार की, उसके कारण ही तो फीलिंग्स, माया, मूड ऑफ, ये सारी चीजें आती तो उसी के कारण है। और वो सारी स्थिति क्यों आती है, हिसाब किताब हमारा उधार का है। तो हरेक को माया आती है, हर कोई इन बातों को पार करके ही आगे बढ़ा है, विजयी बना। हरेक से माया आती है, हरेक से माया आती है। हम सोचते हैं ना भी ये तो बाबा का अनन्य बच्चा है, पक्का बच्चा है, पर उनसे भी कब हमें पेपर आ जाए। कहीं भी माया आती है, घर में रहो तो भी आएगी, सेवा में रहो तो भी आएगी, मधुबन आओ तो भी आएगी। बाबा जब व्यक्तिगत मिलते थे, उस समय एक भाई को बाबा से ही माया आई कि बाबा ने मेरे को बरोबर वरदान नहीं दिया। उसके साथ बहुत अच्छी बात की, मेरे साथ बराबर नहीं की, उसमें उनकी अवस्था खराब हो गई। तो माया दूसरों से नहीं आती है, पर हमारा अपना ही कारण होता है, या हम समझ नहीं पाते हैं, या हमारे में शक्ति नहीं है, तो ये बातें आती हैं। बाबा नहीं पहले मिलते थे ना शांतिवन में भी, तो स्टेज पर कहीं उससे मिलते थे ना, तो दूसरों को संकल्प चलते थे, कईयों को डिस्टर्बेंस होता था। और तीसरी बात बाबा ने कही है कि अंत तक माया आएगी, हरेक को आएगी, हरेक से आएगी और अंत तक आएगी, क्योंकि उसका काम है आना। बाबा कहते हैं तुम्हारा काम है भगाना, क्योंकि फाइनल रिजल्ट तक तो बातें आएंगी ना। इसलिए हम केयरलेस नहीं हो सकते, अलबेले नहीं हो सकते, अंत तक हमें अटेंटिव रहना है, अर्थात स्मृति स्वरूप रहना। तो हम बाबा के बच्चे कमजोर नहीं है, हम कोई डरते नहीं हैं, हिलते नहीं हैं, हमें कांस्टेंट याद है ना कि हमारे साथ कौन है। हमारे साथ कौन है, तो हर प्रकार से, क्योंकि परिस्थिति पर विजय पाना है। तो बाबा ने कहा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, और वास्तव में ये ड्रामा की ही ये पॉइंट है। ऐसा नहीं है बाबा हमें बता रहे हैं, बाकी ये ड्रामा की विशेषता ही ये है कि इस ड्रामा में जो कुछ होगा वो हम नहीं जानते हैं, इसलिए हमें अचानक ही लगेगा। हम त्रिकालदर्शी नहीं हैं, हम एक कालदर्शी हैं, तो हमें अचानक ही लगेगा ना ऐसे कैसे हुआ। पर बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान स्वरूप बनाया, त्रिकालदर्शी बनाया है, इसलिए बल होता अचानक है पर हमें महसूस नहीं होगा। कुछ भी होगा, कभी भी होगा, पर हम तो अपनी स्थिति में हैं, ज्ञान स्वरूप, स्मृति स्वरूप। और बाबा ने कहा ना स्मृति स्वरूप ही समर्थी स्वरूप बनता जाता है। तो नेचुरली हम हलचल में नहीं आएंगे, अपसेट नहीं होंगे, वो है स्थिति। और इसलिए बाबा ने हमें पुरुषार्थ को दिनचर्या बना दी है, रूटीन क्यों बनाया है बाबा ने, क्योंकि हमें स्थिति बनानी है। अब देखो पूरे ड्रामा को मुझे ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा? सिंपल बात, संगम युग को सफल करना होगा, क्योंकि संगम की प्रारब्ध सतयुक्त रहता है, संगम की यादगार द्वापर कलयुग है, भक्ति की सारी रस्में वो भी तो संगम के पुरुषार्थ से ही यादगार बनते हैं। तो बाबा कहते हैं पूरे ड्रामा का शूटिंग संगम युग में, 5000 वर्ष का ड्रामा सफल करना है तो संगम युग सफल करना, और संगम युगी ब्राह्मण जीवन सफल करना है तो रोज सफल कर। रोज सफल, जीवन सफल, ड्रामा सफल। जीवन क्या है? आज और कल कहते हैं, जीवन क्या है? आज और कल। इसलिए रोज सफल, जीवन सफल। तो बाबा ने हमारी दिनचर्या बना दी ना, पुरुषार्थ महसूस नहीं होता है हमें, यह हमारा रूटीन है। रूटीन तो ऑटोमेटिक चलता है ना? देखो हम सो जाते हैं फिर अपने आप टाइम से उठ जाता है ना, नींद पूरी हो गई माना, आंखें खुल गई। रूटीन अपने आप चलता है, टाइम हुआ सो गए, टाइम हुआ उठ गए, टाइम हुआ नहा लिए, टाइम हुआ ऑफिस गए, टाइम हुआ खा लिया, इट्स रूटीन। तो बाबा ने पुरुषार्थ को ही रूटीन में लाया है, कि तो इससे रूटीन, कुछ एक्स्ट्रा आप नहीं कर रहे हैं, नया नहीं कर रहे हैं, ये आपका रूटीन है। रोज अमृत वेले उठना, रोज बाबा को याद करना, रोज महावाक्य सुनना, रोज दिन भर अप्लाई करना, फिर शाम को फिर बाबा को याद करना, रिवाइज करना, हिसाब देखना, ये रूटीन है। भारी कौन सी चीज लगती है? जो एक्स्ट्रा करते हैं, एक्स्ट्रा करते हैं तो भारी लगता है ना, कि अरे भाई ये ऊपर से और कौन सा काम आ गया। रोज का कॉमन, तो ये रूटीन है, नई बात नहीं है। अमृत वेला उठना हमारा रूटीन है। शुरू में नए नए हैं तो आपको तकलीफ लगती है, अब 1 साल 2 साल 10 साल हो गए ना, अब तो क्या लगना चाहिए? रूटीन। और इसलिए अनुभव भी बताते हैं ना कि आंख खुल ही जाती, अभ्यास हो जाता है तो अपने आप आंख खुल जाती, कोई मेहनत की बात नहीं। तो ये मेहनत की बात नहीं है, स्थिति को मेंटेन करना, बाबा कहते हैं ये आपके डिसिप्लिन है, ये आपकी संस्कार है। ये आपके जीवन की धारणा है। जैसे लौकिक में लोग कहते हैं ना भी हमारे खानदान में ऐसा नहीं कर सकते, हमारे परिवार में तो ऐसे ही चलता है, कितना नेचुरल एक्सेप्ट करते हैं ना कि हमारे कुल में ऐसा नहीं होता है। डिस्टर्ब होना ब्राह्मण जीवन में शोभा नहीं देता है। हम कंप्लेन नहीं करते हैं बाबा को बैठ के, रोते नहीं है बाबा के आगे। अब हम बाबा के बच्चे मजबूत हैं, तैयार हैं, कुछ भी हो हमें अपनी अवस्था बिगाड़नी नहीं, क्योंकि हमें पता है। क्या पता है? हर बात में कल्याण है, हमारा नुकसान होना ही नहीं है। देखने में लगेगा सब कुछ गया, पर सब कुछ जाने के बाद भी भाग्य और भगवान तो साथ ही है, तो अनेक गुणा होके वापस आ जाता है। सिर्फ हिलना नहीं है मुझे बस। तो ये हमें अपना पहले से मन को बनाते जाना होता है। रोज ये हमें बहुत टाइम हो गए, भूल गए, इसलिए बाबा ने बता दिया है। सिर्फ हमें फैसला करना है, दृढ़ करना है कि मुझ ज्ञानी तू आत्मा को, परमात्मा योगी आत्मा को मुझे कैसे चलना है। खुद को रेस्पॉन्सिबल समझ लेंगे, अपनी स्थिति के जिम्मेवार समझ लेंगे, तो हम बहुत जल्दी बनते जाएंगे। एक रन। ओम शांति। थोड़ा अभ्यास करेंगे। कुछ कहना?
आदरणीय दीदी जी का तहे दिल से बहुत बहुत आभार, एक हाथ की ताली से बहुत बहुत हमारे अंदर की गुथियां खोली, सॉल्यूशंस बताए, सिर्फ रिवाइज करके उसको हमने पालन करना है। कभी हमें कमल बनना है, देह से न्यारा होना है, फरिश्ता होना है, ट्रस्टी होना है, पुरुषार्थ को रूटीन बना देना है। बस अटेंशन से इन बातों को बुद्धि में अंडरलाइन करें तो परिस्थिति स्वस्थिति के आगे कुछ भी नहीं है।
आपको उनके कान में बताना है कि आज सारे दिन में जो भी क्लासेस हुए, कौन सी पॉइंट आपको बहुत अच्छी लगी, अंडरलाइन की, वो कान में बताना है, आवाज में। वो आपको बताएंगे, आप उसको बताएं, हा? एक पॉइंट आप उसको बताएं, फिर वो एक पॉइंट आपको बताए, कान में। हा? बाबा के सामने हो जाए, मंत्र मिला सबको एक दो से, पांच बातें अंडरलाइन करेंगे। संगम युग की सिद्धि है। सफलता है। हमारी बाप समान आत्मा स्थिति पुरुषार्थी से परिपक्व मुझे बनना है। बाबा जैसी ऊंची आत्मस्थिति बनानी है। ये मेरा दृढ़ लक्ष्य है। राइट साइड घूम जाए। संगम युग का कल्याणकारी समय और कल्याणकारी बाबा हमारे साथ हैं। ड्रामा फेवर में है, बाबा साथ है। ये मौका है ड्रामा में अपने आप को जितना ऊंच बनाना चाहे मैं बन सकती हूँ। राइट साइड घूम जाए। प्यारे बाबा मम्मा हमारे आदर्श हैं, एग्जाम्पल है। वो बन सके तो हम भी बन सकते हैं। बाप दादा को फॉलो कर, कल्प कल्प के हम विजयी आत्माएं हैं। हम ही बने थे, हमें ही बनना है। राइट साइड को हम निमित्त हैं, नई दुनिया स्थापन करने की। सतयुगी दिव्य सुखमय संसार स्थापन करने के निमित्त हम बाबा जिम्मेवार हैं, हम पूरे मददगार हैं। अपने सत्य स्थिति से शुद्ध पावन स्थिति से शक्तिशाली दिव्य स्थिति से मददगार बनना है। राइट साइड घूम जाए बाबा के सामने बैठ जाए। मेरा बाबा से वचन है, जो चलन और चेहरे से। बाबा को प्रत्यक्ष करना है। यज्ञ का नाम रोशन करना है। बाबा ने हमें सब कुछ दिया है, ज्ञान, प्यार, सुख, आनंद, शांति, शक्ति, साथ, मदद, विश्व के आगे निमित्त बनकर माध्यम बनकर सभी आत्माओं को बांटना है।
Me, Freddy.